हवेली। अगली सुबह, रत्ना देवी का कमरा। बाहर धूप हल्की थी, मगर हवेली के अंदर अब भी ठंडक पसरी हुई थी। पुराने लकड़ी के फर्श पर धूप की पतली लकीरें रेंग रही थीं। धीरे धीरे, जैसे वक्त भी इस घर में ठहर कर चलता हो। रत्ना देवी अपनी पुरानी लकड़ी की झोली पर बैठी थीं, सफेद साड़ी में, बालों में चांदी की लकीरें और आंखों में वही गहराई जो सिर्फ तजुर्बे से आती है। उनके पास वाली छोटी टेबल पर अखरोट और काजू की थाली रखी थी, हाथ में लोहे का छोटा नट क्रैकर जिससे वो नट्स तोड़ते हुए धीरे धीरे चबाती जा रही थीं। हर बार जब वो अखरोट तोड़ती तो एक टक की आवाज कमरे में गूंजती और उसी के साथ उनकी झोली की चर चर आवाज एक लय बना रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, एक में रत्ना देवी के पति जो अब नहीं रहे, दूसरे में शकुंतला की शादी की तस्वीर जहां वो शर्मीली मुस्कान के साथ साड़ी के पल्लू में छिपी थी। दरवाजा धीरे से खुला, शकुंतला अंदर आई, साफ सुथरी साड़ी, माथे पर हल्का सिंदूर, चेहरे पर वही सख्त भाव जो उसकी पहचान बन चुका था, लेकिन आज उस चेहरे पर थोड़ी झिझक, थोड़ी थकान और बहुत सी सोच थी। रत्ना देवी ने बिना ऊपर देखे कहा, आ गई तू, सुबह से तेरा कोई पता नहीं? शकुंतला ने पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, थोड़ा काम था मां, रसोई में देखा नहीं आपने? रत्ना देवी ने एक अखरोट तोड़ा, उसके अंदर का दाना हथेली पर रखते हुए बोली, देखा तो सब, पर मन नहीं मानता जब तू चुप रहती है, कुछ बात है तेरे मन में, चेहरा साफ बता रहा है। शकुंतला ने होंठ भींचे, कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हां मां, बात तो है, कल शाम ससुराल से चिट्ठी आई थी। रत्ना देवी का हाथ वहीं रुक गया, नटक्रैकर बीच में ही अटका रह गया। उन्होंने धीरे से पूछा, किसकी चिट्ठी? सासू मां की, शकुंतला ने जवाब दिया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, कह रहे हैं अगर संभव हो तो मुझे वहां बुला लें। रत्ना देवी ने भौहें से कोड़ी, अब इस मूड में फिर वही सब शुरू करने का इरादा है? तेरे ससुराल में तो तेरा मन कभी लगा नहीं, और वैसे भी वहां कौन है अब, तेरा पति भी तो शहर में रहता है। शकुंतला ने गहरी सांस ली, हां वो तो है ही, लेकिन मां, सासू मां बीमार है, पति ने भी फोन करके कहा कि अगर जा सको तो अच्छा रहेगा, बस कुछ दिन की बात है, मिलने के लिए बुलाया है। रत्ना देवी ने ठंडी सांस छोड़ी, फिर धीरे से कहा, देख शकुंतला, औरत का दिल जरा सा नरम हो जाए तो सब उसे अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। तेरी सास ने तेरे साथ क्या सुलूक किया था भूल गई क्या? शकुंतला ने सिर झुकाया, कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हां मां, बात तो है, कल शाम ससुराल से चिट्ठी आई थी। रत्ना देवी का हाथ वहीं रुक गया, नटक्रैकर बीच में ही अटका रह गया। उन्होंने धीरे से पूछा, किसकी चिट्ठी? सासू मां की, शकुंतला ने जवाब दिया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, कह रहे हैं अगर संभव हो तो मुझे वहां बुला लें। रत्ना देवी ने भौहें से कोड़ी, अब इस उम्र में फिर वही सब शुरू करने का इरादा है? तेरे ससुराल में तो तेरा मन कभी लगा नहीं, और वैसे भी वहां कौन है अब, तेरा पति भी तो शहर में रहता है। शकुंतला ने गहरी सांस ली, हां वो तो है ही, लेकिन मां, सासू मां बीमार है, पति ने भी फोन करके कहा कि अगर जा सको तो अच्छा रहेगा, बस कुछ दिन की बात है, मिलने के लिए बुलाया है। रत्ना देवी ने ठंडी सांस छोड़ी, फिर धीरे से कहा, देख शकुंतला, औरत का दिल जरा सा नरम हो जाए तो सब उसे अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। तेरी सास ने तेरे साथ क्या सुलूक किया था भूल गई क्या? शकुंतला ने सिर झुकाया, कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हां मां, बात तो है, कल शाम ससुराल से चिट्ठी आई थी। रत्ना देवी का हाथ वहीं रुक गया, नटक्रैकर बीच में ही अटका रह गया। उन्होंने धीरे से पूछा, किसकी चिट्ठी? सासू मां की, शकुंतला ने जवाब दिया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, कह रहे हैं अगर संभव हो तो मुझे वहां बुला लें। रत्ना देवी ने भौहें से कोड़ी, अब इस उम्र में फिर वही सब शुरू करने का इरादा है? तेरे ससुराल में तो तेरा मन कभी लगा नहीं, और वैसे भी वहां कौन है अब, तेरा पति भी तो शहर में रहता है। शकुंतला ने गहरी सांस ली, हां वो तो है ही, लेकिन मां, सासू मां बीमार है, पति ने भी फोन करके कहा कि अगर जा सको तो अच्छा रहेगा, बस कुछ दिन की बात है, मिलने के लिए बुलाया है। रत्ना देवी ने ठंडी सांस छोड़ी, फिर धीरे से कहा, देख शकुंतला, औरत का दिल जरा सा नरम हो जाए तो सब उसे अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। तेरी सास ने तेरे साथ क्या सुलूक किया था भूल गई क्या? शकुंतला ने सिर झुकाया, कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हां मां, बात तो है, हर बार हर ताना हर आंसू, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सब कहेंगे कि बहू ने मुंह मोड़ लिया। रत्ना देवी ने अखरोट का दाना तोड़कर मुंह में डालते हुए कहा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिंदगी काटी नहीं जाती, और वो लोग जिन्होंने तेरे दिल पर इतनी चोट की, अब उनकी चिंता क्यों? शकुंतला ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन भी था और मजबूरी भी। कभी कभी लगता है माँ, दिल को सुकून सिर्फ वही चीज देती है जो उसे सालों से चुपती रही हो। शायद इस बार जाकर मैं उस चुभन से समझौता कर लूं। रत्ना देवी ने झूले की चाल धीमी की। उनकी आंखें अब शकुंतला के चेहरे पर टिक गईं। तू हमेशा से जिद्दी रही है, जो सोच लेती है वही करती है। लेकिन सुन ले, वहां कोई तेरी प्रतीक्षा में नहीं बैठा। बीमारी का बहाना बनाकर तेरे पति ने बुलाया है ताकि तू फिर वही घर परिवार के झमेले में फंस जाए। शकुंतला ने सिर उठाया। ऐसा नहीं है माँ, वो बस चाहते हैं कि मैं जाकर देखाऊं मैं कौन सा वहां रहने जा रही हूं। दो दिन रुककर लौट आऊंगी। रत्ना देवी ने धीरे धीरे झूला रोक दिया। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। उन्होंने नटक्रैकर टेबल पर रखा और धीमे स्वर में कहा, तेरे जाने से इस घर की हवा बदल जाएगी शकुंतला। रम्या अभी बहुत छोटी है, तेरे बिना उसका मन कौन समझेगा? शकुंतला का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। रम्या अब बच्ची नहीं रही माँ, उसे भी तो समझना सीखना होगा। और वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस सासू माँ से मिलकर लौट आऊंगी। रत्ना देवी ने आंखें मूंद ली। कुछ यादें उनके चेहरे पर उतर आईं। धीरे से बोली, हम औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि लौट आएंगी, पर कई बार रास्ते लौटने नहीं देते। शकुंतला ने उनकी बात का अर्थ डालते हुए कहा, माँ आप हमेशा इतनी उलझी बातें क्यों करती हैं? रत्ना देवी ने आंखें खोली। क्योंकि मैंने वो सब देखा है जो तू अभी देखना बाकी है। तेरी सास की बीमारी असली है या बहाना, ये तुझे वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन याद रख, अगर कुछ भी गलत लगे तो एक पल भी मत रुकना। शकुंतला ने उनकी हथेली थामी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, अब बस फर्ज निभाने जा रही हूं। रत्ना देवी ने हल्की मुस्कान दी। फर्ज निभाते निभाते औरत का मन खाली हो जाता है शकुंतला, थोड़ा अपने लिए भी जीना सीख ले। शकुंतला उठी, उसने दुपट्टा सिर पर रखा और धीरे से कहा, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। रत्ना देवी ने झूला फिर से हिलाया, बस इतना कि वापस लौट कर आना। शकुंतला ने हल्की झुककर माँ के पैर छुए। रत्ना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जहां जा रही है वहां शब्दों से ज्यादा खामोशियां सुनाई देंगी, सावधान रहना। शकुंतला कुछ पल माँ के चेहरे को देखती रही। वो चेहरा जो कठोर दिखता था पर अंदर से बिल्कुल नर्म था। फिर बिना कुछ बोले बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो रत्ना देवी ने धीरे से अखरोट उठाया, उसे हथेली में दबाया और बुदबुदाई, हर बार जब मेरी बेटी उस घर का रास्ता लेती है दिल कांप जाता है, न जाने इस बार किस इम्तिहान के लिए बुलाया गया है उसे। झूला फिर चल पड़ा। कमरे में वही चर चर की आवाज गूंजने लगी, जैसे पुरानी हवेली खुद से कह रही हो। कुछ बुलावे सिर्फ मिलने के नहीं होते, कुछ किस्मत की दिशा बदलने के लिए आते हैं।